राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 3 जुलाई 1993 को प्रातः लगभग 8:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 सच्चिदानंद रूप से परमात्मा सब में विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रकट हुए मैं जाना। सब में परिपूर्ण होते हुए भी हृदय से हृदय तिष्ठति सर्वस्य चाहम हृदय सन्निवेशो। तो हृदय में परमात्मा की प्राप्ति का स्थान है, यहाँ भगवान विराजमान है। जो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है, सांसारिक दुखों का अत्यंत अभाव करने वाला है, वो ज्ञान हृदय में विराजमान है। और ज्ञान का जाम प्राकृतिक हुआ वही वेद कहलाते हैं, और जिनसे प्राप्त होते हैं वो गुरु कहलाते हैं। वो वास्तव में अपना ही बोध है, वो अपने भीतर है, बोध रूप स्वयं है, और उनसे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं हृदय में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठति सबके हृदय में है, जिसके द्वारा हमें उसको जान लेते हैं वही प्रकाश देने वाला है। गुरु की महिमा बहुत शास्त्रों में बताई है, पर गहरे उतर के उस विषय को समझे तो गुरु ज्ञान देते नहीं है। वो ज्ञान रूप परमात्मा सबके भीतर विराजमान है, उसी को ही जागृत कर देते हैं, इशारा कर देते हैं कि वो तुम्हारे हृदय में विराजमान है। शिष्य को तो दिखता है कि महाराज ने लिया है, पर महाराज के मन में ये बात नहीं आती कि हमने ज्ञान दिया है। ज्ञान तो उसी का ही है, स्वतः ही उसी का है, उसको पता नहीं है, उस तरफ लक्ष्य नहीं है, उस तरफ भीतर सी दृष्टि डाली नहीं है। इस वास्ते होते हुए भी अप्राप्त की तरह है, प्राप्ति नित्य प्राप्ति अप्राप्त की तरह है। उसको प्राप्त करा देना संत महात्माओं का काम है। संत महात्मा साधु ही हो ये कोई कायदा नहीं है। गृहस्थ आश्रम में भी संत होते हैं, पहले जितने ऋषि मुनि हुए हैं प्राय गृहस्थों में हुए हैं, उनके कुटुंबताज थे, पुत्रादी थे, रहते थे, तपस्या करते थे जंगलों में, गायें भी थी उनके पास, तो वे संत हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे महात्मा। उनकी कृपा से आज भी ज्ञान हमारे प्रकट है। अभी जैसे श्री वेद व्यास जी महाराज की बात कही तो ये सर्वोपरि हुए, इन्होंने बहुत विलक्षणता बताई है। आचार्य अलग अलग हुए हैं, उन लोगों ने अपने ज्ञान को सिद्ध किया है, तो प्रस्थान त्रयी से किया, 3 प्रस्थान है बड़े। श्री शंकराचार्य है, वल्लभाचार्य है, रामानुजाचार्य है, विष्णु स्वामी है, निम्बार्क स्वामी है, और कृष्ण चैतन्य भगवान है, चैतन्य महाप्रभु, ये वैष्णवों में विशेष आचार, शंकराचार्य ज्ञानियों में विशेष आचार्य है। इन्होंने अपने मत को गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्रों के द्वारा सिद्ध किया। तीन प्रस्थान है, मानो बड़े राजमार्ग है। तो गीता के द्वारा उसको सिद्ध किया है, गीता पर भाष्य लिखे है, और 10 उपनिषद है, ईशकेन ग्रंथ आदि, उन 10 उपनिषदों पर व्याख्यान किया है और ब्रह्म सूत्रों पर व्याख्यान किया है, जो कि वेद व्यास जी महाराज के बनाए हुए हैं। तो उन पर व्याख्यान करके अपने मत को सिद्ध किया है। वो सारी चीज बताई है, उनमें आपस में मतभेद है, थोड़ा थोड़ा ऋषियों के मतभेद है, परंतु संपूर्ण दुनिया का कल्याण करना ये सबका उद्देश्य है, सबका ध्येय है। जितने महापुरुष हुए हैं, सबका ज्ञान हो जाए, सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सदा के लिए दुखों से छूट जाए, परम आनंद की प्राप्ति कर ले, इस भाव से उन संत महात्माओं ने कहा है। गीता का भी उद्देश्य यही है। अर्जुन जब तक सन्मुख नहीं हुए तो साथ में रहते हुए भगवान ने गीता को उपदेश नहीं दिया। महाभारत के आरंभ में जब दोनों सेनाएं लड़ने के लिए खड़ी हो गई, उस समय अर्जुन को मोह हुआ और वो घबरा गए। अर्जुन युद्ध से नहीं, मरने से नहीं, मारने से घबराए, इन गुरुजनों की हत्या हो जाएगी, बड़ा भारी पाप लग जाएगा। उनके पिता संदेह हुआ कि छात्र धर्म की दृष्टि से तो युद्ध करना चाहिए और कौटुंब दृष्टि से युद्ध नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या करूं। ऐसी व्याकुलता के समय भगवान ने उपदेश दिया। वो जब पात्र हो गए, ज्ञान को लेने के लिए सन्मुख हो गए, तब भगवान ने उपदेश दिया। ऐसा विलक्षण उपदेश दिया कि उसके जोड़ी का कोई ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता एक अपना अलग ही एक विशेष सिद्धांत रखती है। उसमें अपने अपने आचार्यों ने अपने अपने मत का वर्णन किया। शंकराचार्य कहते हैं कि द्वैत का वर्णन है, रमानुज ग्रंथ की विशिष्टता द्वैत का वर्णन है, निम्बराज करी द्वैताद्वैत का वर्णन है, आदि आदि आचार्यों ने अपनी अपनी दृष्टि से उन पर भाष्य लिखे हैं। वही भाष्य प्रसिद्ध है और वही संप्रदाय चलती है, उसके अनुसार ही लोग लाखों करोड़ों की संख्या में चलते और अपने अपना अपना कल्याण का मार्ग प्रसिद्ध करते हैं। खास क्या बात कही है तो ध्यान दें आप, एक तो परमात्मा का क्या स्वरूप है और ये जगत का, प्रकृति का, माया का क्या स्वरूप है और एक जीव का क्या स्वरूप है, ये तीन बातें खास है। तो इसकी सार चीज इतनी है कि जीव लोग तो हम लोग जीव है, और सर्वोपरि ऊंचे परमात्मा जिससे बढ़कर कोई हो नहीं सकता वो परमात्मा है। उसके रूप सगुण निर्गुण दो है, पर वो परमात्मा है। और प्रकृति और प्रकृति का कार्य यह संसार है। तो संसार के भोगों में न फंसकर और परमात्मा की प्राप्ति करे, ये ऋषि मुनियों का, संतों का, महात्माओं का, आचार्यों का उद्देश्य है। सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाए। कारण कि दुनिया दुख पा रही है, सुख के प्रलोभन से पदार्थों को संग्रह करके उपभोग में लाते हैं, वहम रहता है कि इनसे सुख मिल जाएगा, इनसे सुख मिल जाएगा, इनसे सुख मिल जाएगा, परंतु तृप्ति नहीं होती। इंद्रादि देवराज है, त्रिलोकी के मालिक है, उसको भी तृप्ति नहीं है। बिना परमात्मा के संसार के लोगों से तृप्ति होती नहीं। भाइयों बहनों से कहना है, आप जो कहते हैं संग्रह करने, धन और भोग भोगने, इससे तृप्ति हो जाएगी, कभी नहीं होगी। पक्की निश्चित बात है, एक भी आदमी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भोगों से और धन से तृप्ति हो गई हो। क्यों? कि है तो परमात्मा अंश देवतन पर ये पदार्थ है जड़ नाशवान क्षणभंगुर। तो नाशवान से अविनाशी की भूख कैसे मिटेगी? अविनाशी भूख तो अविनाशी तत्व के जानने से मिटेगी। उस अविनाशी तत्व के जानने के लिए ही महात्माओं का प्रयास है। हम लोग भी आज बैठ करके एकांत में विचार करते हैं यहाँ, तो सबको परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, ऐसे हमने गुजरना चाहिए। इसके लिए याद आ गई ये बात, भगवद गीता बहुत विलक्षण है, बहुत अलौकिक ग्रंथ है। और गुरु पूजा हो तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत गुरु भगवान कृष्ण है, ऐसे तो व्यास जी महाराज है, पर हम लोगों के लिए गीता के वक्ता भगवान कृष्ण है, ये जगत गुरु है। और भगवद गीता ये उनका मंत्र है, गुरु मंत्र देते हैं, वो गुरु मंत्र है भगवद गीता, उसमें जो कहा है उसके अनुसार चलना जीव का काम है। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से ऊंचा उठ करके अनुत्पन्न तत्व को प्राप्त करना चाहिए, ये सिद्धांत है। तो सच्चे हृदय से आज से ही भगवद गीता का पाठ करना और इनकी टीकाओं का मनन करना, भगवान की कृपा से हम लोगों को बड़े सस्ते दामों में बड़ी सरल भाषा में तत्व बेचने टीका है, साधु संजीवनी है, गीता माधुरी माधुरी है, उनको देख देख हम समझें गीता दर्पण है, वो तो समझते ही चले जाए, इसका अंत नहीं आता है। तो इसका नियम आज से लेना चाहिए कि भगवद गीता का हम पाठ करें। तो आज पूर्णिमा मानी जाती है, तो पूर्णिमा के दिन 18वां अध्याय पाठ करना है, प्रतिपदा के दिन पहला अध्याय, दूध के दिन दूसरा अध्याय, तीज के दिन तीसरा, ऐसे दसवीं के दिन दसवां, ग्यारह के दिन ग्यारहवां, और बारिश का बारहवां तेरहवां, और तेरह का चौदहवां पंद्रहवां, चौदह का सोलहवां सत्रहवां, और पूर्णिमा के दिन अठारहवां, ऐसे 15 दिनों में भगवद गीता का पाठ कर लें। और आज ये नियम ले लें, ये कृष्ण मोदय जगत गुरु भगवान का पूजन करें और भगवान की गुरु दक्षिणा दें, गुरु कृपा करें, उनके शरण होकर के गीता का पाठ करें। भगवान को याद कर गीता को पढ़ने से गीता याद हो जाती है, ऐसे मेरे काम पड़ा है। कलकत्ता में एक सज्जन थे, मुनि भी करते थे, धनी ज्यादा थे नहीं, वो कह मैं गीता सीखना चाहता हूँ, ब्राह्मण को देखू तो कुछ रुपये लेते, इतना कहाँ से खर्च आऊ, कैसे करूं? तो मैंने कहा कि ऐसे करो, भगवान कृष्ण की मूर्ति रख लो, फूल सजा दो, अगरबत्ती कर लू, और कृष्ण मंदिर जगत गुरु में ऐसे कर और गुरु जी के सामने गीता पढ़ना शुरू कर दो। पूरी गीता याद कर ली उन्होंने और मैंने पूरी गीता सुनी उसकी। संस्कृत जानते नहीं थे परंतु अशुद्धि बहुत कम आई, ऐसी शुद्ध पाठ कर दिया उन्होंने। माधुरी जानते थे, हिंदी भी शुद्ध जानते नहीं थे। तो भगवान का आश्रय लेकर करे तो बहुत सुंदर से गीता याद हो जाती है, रामायण याद हो जाती है। गीता और रामायण ये दो ग्रंथ प्रासादिक है, ये कृपा करते हैं, इनके शरण हो जाए तो ये आप से आप आने लगते हैं, अभिमान से आते नहीं। एक बात वो भी याद आ गई, बहुत वर्षों की बात है, कोई 45-50 वर्ष हो गया ऊपर, 50 से ऊपर, कोई 60 वर्ष हो गया होगा। कलकत्ता में मैं रहता था तो वहां गीता जयंती का उत्सव हुआ, उस पर अच्छे पंडित बुलाए गए, उसमें एक रामायणी जी आए थे, बड़ा सुंदर रामायण का व्याख्यान करते थे। तो मेरा गीता तो रहते ही है, गीता का मैं भी कहता था, तो उनके मन में आई कि मैं गीता याद कर लूं, गीता पढ़ लूं, गीता की व्याख्या करूं, तो मेरे को एकांत मिलेगा, आप गीता पढ़ा दो। मैं वही मैं पढ़ाता नहीं हूं, आप याद कर लो और फिर बात मैं कह दूंगा। तो याद करना तो मामूली बात है, मैं व्याख्यान में श्लोक सुनता हूं और याद हो जाता है। तो मुझे पहला 12वां अध्याय याद कर लें, फिर उसका विवेचन करेंगे, बता दूंगा मैं। तो मन ली करने लगे, फिर महाराज कुछ दिन के बाद में एकांत मिले और कहा कि मेरे को गीता याद नहीं होती है, कंठ करता हूं याद नहीं होती है, कोई बात बताओ। अब मैं क्या बताऊं, क्या कारण है महाराज, मैं तो जानता नहीं, क्या बताऊं, याद होती नहीं गीता। मैं कहा महाराज गीता क्या दिन है, बड़ी सुगम है, सरल संस्कृत है। तो मेरे को पूछा कि तुम बताओ महाराज, मैं जानता नहीं, मैं नहीं जानता कि क्या कारण है आपको गीता नहीं याद हुई। मैं भी बड़े विचार में पड़ गया, क्या बात है, श्लोक कंसर्स हो जाता है कि व्याख्या में सुनता हूं वो मेरे श्लोक याद हो जाता है, ऐसा कहते थे। फिर वहां से वे गए, मैं ऊपर छत पर 5 तल्ले पर रहता था, तो वे वहां से रवाने हुए, मेरे मन में आया कि क्या बात है, क्यों नहीं होती गीता। तो याद आया कि वे कहते हैं मैं श्लोक सुन करके ही याद करता हूं व्याख्यान की, वो ये अभिमान है, अभिमान के कारण याद नहीं हुई। एक सज्जन के सामने मैंने कहा तो भाई गीता याद नहीं हुई, कारण पूछा, मैं कारण बता नहीं सका, और फिर देखा कि कारण अभिमान है। तो सज्जन बोले कि पंडित जी को बताना नहीं था, आपको बताना था, तो भगवान ने बता दिया अभिमान कारण है, पर पंडित जी को कहना नहीं था, वे गए आपके कोई मन में। तो ऐसे गीता अभिमान कोई कर ले, पंडिताई के जोर से गीता और रामायण का अर्थ नहीं कर सकते, सीधी सीधी भाषा में रामायण है, परंतु पंडिताई के जोर से अर्थ नहीं कर सकते। ऐसे गीता का अर्थ भी कोई पंडिताई से करना चाहे पढ़ाई के जोर से नहीं होता है, और शरण हो जाए गीता के शरण हो जो बड़ा विचित्र अर्थ आ जाता है। मैं ऐसे आदमी देखे मैंने बिना पढ़े हुए गीता याद कर लिया, गीता जी का अर्थ कहने लगे, तो विचित्र विचित्र ढंग बोले वो, पर विचित्र ढंग बोलते भी बात गीता का सिद्धांत कहते, उन्होंने अर्थ सुनाया, जोश ये सर्वकर्माणि विद्वान युक्त, विद्वान को चाहिए कि संसार में जोश पूर्व गीता याद कराओ। संस्कृत पढ़े हुए नहीं थे, पर तो मतलब तो वहां कोई समझे, जोश ये सर्व बनो, सारे आदमी को गीता में लगाना चाहिए, दूसरी प्रीति से बनी जोश उठाया, तो कुछ भी पता रहे अर्थ वास्तविक मतलब उसके समझ में आ जाता है, भगवत गीता की कृपा से वो जानने लग जाते हैं। तो ये कृपा करके और प्रकट होते हैं, और कृष्ण बंदे जगत गुरु कहो तो जगत गुरु है तो किसका गुरु नहीं बताओ। जो कोई भाई बहन बैठे हैं, कोई कह सकता है कि मैं जगत से बाहर हूं, जगत में और जगत मात्र गुरु भगवान है, तो हमारे गुरु महाराज सिखा देंगे, गीता जानना चाहो गीता पढ़ा देंगे, वो सब जानते हैं भगवान, सब काम जानते। मैंने बहुत बार कहा है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सब गीता जो जानते हैं भगवान, तो उस गीता का अध्ययन आप लोग करें। एक सज्जन आए थे व्यापार करने वाले, वो जो एक घड़ी पर बढ़ता था, मैंने सम्मत सम याद नहीं है, एक घंटा समय बदला था, अभी जो 11 बजती है वहां 12 बजती थी, क्या होता था, एक घंटा का फर्क था। ऐसा दिन दिनों में चल रहा था गांव, उन दिनों में वो आए थे, तो वो आए तो हमारे सज्जन हमारे प्रेमी बैठे थे, हम गीता का विचार कर रहे थे, तो गीता के श्लोक कौन सा दोगे, अमुक अध्याय का अमुक श्लोक कौन सा, अमुक अध्याय किस अध्याय का है, ये श्लोक कहाँ का है, ऐसे हाथ में परीक्षा कर रहे थे, प्रश्नोत्तर हो रहे थे। तो ये बोले कि गीता मेरे को याद है, परंतु इस तरह से मैं नहीं बता सकता, तो ये गीता की संख्या याद कैसे हो। तो गीता याद संख्या करना हो तो आप गीता का उल्टा पाठ करें बिना पुस्तक, ऐसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तक उल्टा पाठ आप करो निगर के बिना पुस्तक संख्या याद हो जाती है, तो उन्होंने वह करना शुरू कर दिया। तो व्यापार करते दिन में घूमते पाठ करते रहते, तो वो कहते थे कि महारात्रि में एक गद्दी में सोया था, अब कलकत्ता में स्वतंत्र जगह तो मिलती नहीं, कहाँ सोए बेचारे, एक सज्जन की गद्दी में वहां पर सो गया, तो मेरे गीता का पाठ हो रहा था, तो मैंने गीता का पाठ किया। तीस चौथे अध्याय तक मैं आ गया, अठारहवें अध्याय से चौथे अध्याय तक बिना पुस्तक कंठस्थ पाठ करते करते वो करते करते मैं सो गया। तो सोता हूं मैं, कोई कही वो बात कहता हूं, तो नींद में भी मैं सोता ही हूं, ऐसा मेरा सपना आया तो छोटे से कृष्ण भगवान वे आए, पीछे पांच सात गोपियां थी बड़ी बड़ी अवस्था की, कहने या छोटी अवस्था का है, तो आगे खेलते खेलते आ गए मेरे पास, और वे गोपियां देखती रही, तो वे कृष्ण भगवान आकर के मेरे पास में बोले, तो मैंने पूछा तुम कितने वर्ष के हो, तो सात बताया तो नौ बताया, पूरा याद नहीं है इतने वर्षों का हूं मैं, तो भगवान वो उत्तर देने लगे तो मेरे मुंह पर के पास में आकर के बोले, छोटा बच्चा बोलेगा ना तो आपके मुंह के पास बोलेगा, उसको ये पता नहीं कि सुनने वाले कान है, वो समझे यहां से सुनते यहां से बोलते, तो मुंह के पास अगर बोलेगा, आप माताओं तो जानती है बच्चा बोलेगा मुंह पास, तो यह बोलने सुना कि यही है, तो मुंह के पास आकर बोले क्यों सट करके, तो यह मेरा वो छाती लगी और बोल सुना, तो बड़ा इतना विलक्षण आनंद आया, ऐसा स्पर्श मेरे को कोई नहीं मिला उम्र भर में, और वाणी सुनी जिसमें ऐसा मिठास कहीं नहीं आया, मैं रो पड़ा, रोती नींद खुली तो भगवान ही नहीं दिखे। तो ये गीता का ही प्रभाव था, उन्होंने ये बात कही, तो गीता सीखने लगे इस तरह से मनन करने से भगवान के दर्शन हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो स्वप्न की बात हुई, वे प्रत्यक्ष भी दर्शन दे सकते हैं, भगवान तो प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, जहाँ प्रेम होगा तो हो जाएंगे, भगवान गीता से राजी बहुत होते हैं। गीता के 18वें अध्याय में दो श्लोक लिखे भगवान ने, यह एकदम परम गुह्यम मत भक्ति सुविधार्थ भक्ति मई परां कृपा मामेश नस्तस्मान कर्म पर शेषो कष्ट में प्रिय कृतमा भवितानुग्रह तस्मा धन्य प्रिय भूमि, ये दो श्लोक है, 78 और 79 68 और 69 दो श्लोक है। तो ये श्लोक पढ़ने से गीता का महत्व होता है, उसमें कहा गीता के अभ्यास करने वाले के समान मेरा कोई प्यारा है ही नहीं, जो कोई गीता का प्रचार करेगा तो मेरा अत्यंत प्यारा होगा, और जो उम्रों को पढ़ाता है विचार करता है प्रचार करता है उनके समान मेरा प्यारा कोई है नहीं, और भविता में तस्माद अन्य प्रियतरोग हुई उससे प्रियतर संसार में कोई होगा भी नहीं, इतना प्यारा वो होगा। श्री शेष जी दयाल जी कहते थे ये दो श्लोक मेरे लग गए, मेरे मन में आए ये दो श्लोक तो सार है, तो उन्होंने गीता प्रेस खोल दिया और गीता का प्रचार किया, इन दो श्लोकों पर गीता में ऐसा कहा है भगवान ने, तो गीता का प्रचार किया, दूसरे छापा खाने बेचारे गीता छापड़ा छोड़ दिया, इतनी सस्ती नहीं दे सकते, उसने गीता का प्रचार किया, तो गीता में उनका जीवन हो गया, इस तरह से गीता का प्रचार करने का बड़ा भारी महात्म्य है, बड़ी विलक्षण महिमा है उनकी। तो ये गीता याद करो आप, केवल दर्शन से भी महात्म होता है, वो घर में गीता की पुस्तक पड़ी रहे तो उसका महत्व है, गीता और रामायण दोनों ऐसे विलक्षण ग्रंथ है, इनको नमस्कार किया जाए तो बड़ी शक्ति मिलती है, घर में पड़े हुए विचित्र है, भूत प्रेत पिशाच आदि वहां नहीं आते, ऐसी बातें देखी है मेरे को सुनाया है। एक माई कहती थी कि मेरे गांव की बात है नए शहर की, जो एक सामने बारी थी, बारी में प्रेत दिखे, वो गीता का पाठ करती थी, तो प्रेत दिखे, मेरे को कुछ सताया नहीं, मेरे को देखे, मेरे को भय लगे, तो मैं गीता का पाठ किया और उस बारी में जब गीता रख दी तो देखना बंद हो गया। ऐसी बात उस समय गीता पाठ से विलक्षण विलक्षण अनुभव हुए लोगों के, और वो आज भी हो सकते हैं, प्रेम पूर्व कोई पढ़े तो उसको पता लगे। बात यह है भाई, मिश्री कितनी मीठी हो परंतु जब तक जीभ पर न धरे तब तक उसकी मिठास का पता नहीं लगता, कहने से कोई समझ नहीं सकता और लहने से पता लग जाए ऐसी गीता ऐसा मिश्री है। इसी तरह से गीता में गहरा उतर करके समझे तो बहुत विलक्षण बात होती है। मेरा एक विश्वास है अपना कि गीता ठीक तरह से पढ़ा हुआ हो तो कोई किसी तरह का प्रश्न पूछो जिसमें गीता में आया ही नहीं है वर्ण, जैसे ब्याह कैसे करना चाहिए, ब्याह वर्ण नहीं है, परंतु उसमें भी उसी बुद्धि काम करेगी जिस विषय गीता में वर्ण नहीं है, उसमें ऐसी विशुद्ध व्याख्या की गई है, भगवान ने ऐसी युक्तियां बताई गई है कि जिनमें आदमी को ज्ञान हो जाए, समझ आ जाए, विलक्षणता आ जाए उसमें भगवद गीता के पढ़ने से, अलौकिकता आ जाए, उत्साह आ जाए, भजन स्मरण होने लगे, गीता का पाठ होने लगता है। गीता बहुत विलक्षण है, गीता सुगीता कर्तव्य कि मैंने शास्त्र विस्तर ही, गीता सुगीता अच्छी तरह गानी चाहिए। गीत शब्द है ना, गीत एक कही गई शब्द है, धातु है, उससे गीता बनता है, तो कहते हैं गीतम होना चाहिए सामान्य नपुंसक से, पर गीतम होना चाहिए भगवत गीतम। गीता क्यों हो गया, स्त्री पुरुष का स्त्री रंग कैसे हुआ, कहते हैं उपनिषद है ये, उपनिषद स्त्रीलिंग होने से भगवत गीता से उपनिषद से आया है, इस वास्ते भगवत गीता है। तो गीत गाता है आदमी मस्त होता है, प्रसन्न होता है, तब तो भगवान के तो हरदम बंसी बजे, मौज रहते हैं हरदम में, चाहे कितने शत्रु और कुछ भी हो उनकी तो बंसी बजती रहती है, तो उन्होंने मस्ती में आकर के अर्जुन के सामने गीत गाया है, इस वास्ते गीता है। भगवान की ऐसी विलक्षण बात है गीता, अर्जुन व्याकुल होता है तब वहां गीता को उपदेश होता है, इस बात में अश्वमेध पर्व पीछे आता है, उसमें अर्जुन ने पूछा कि महाराज वो गीता का ज्ञान हमारे को बताइए, वो मेरे को पूरा याद नहीं है, तो भगवान ने धमकाया कि वो गीता बार बार कही जाती है क्या, उस समय मैंने योग में से तो कही थी, मैंने गलती करी, तब भगवान ने गीता सुनी, उसका नाम अनुगीता है, उसके दुगुने क्षेत्र अध्याय है और बहुत वर्णन है, परंतु इस गीता के समान वो नहीं है। कारण उसका क्या है कि अर्जुन व्याकुल हो गए थे, घबरा गए थे, तो प्यासे को जल मिलता है, भूखे को अन्न मिलता है, ऐसे जिज्ञासु को ज्ञान मिलता है, भगवान के दर्शनों के थ्रू तो उस दर्शन मिलते हैं, तो भगवान के लिए वो तो कहता मैं क्या करूं, ऐसे धर्म संपूर्ण देता है, क्या करूं, मैं जानता हूं कार्पण निर्दोष स्वाच्छा में तो हम धर्म संपूर्ण देता, तो भगवान ने विशेषता से उपदेश दिया है। दोनों मित्रों की विलक्षण बात है, नर नारायण थे, नर अवतार अर्जुन है, नारायण अवतार भगवान कृष्ण है, ये नर नारायण है दोनों ही। तो नारायण नमस्कृत्य नरंचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुनीरयेत्। महाभारत का पाठ करना हो तो नारायण नमस्कृत्य नरंचैव नरोत्तमं, नारायण नमस्कार करो और सरस्वती देवी का नमस्कार करके फिर महाभारत का पाठ करो, ऐसा विधान होता है। आज्ञा ये है वे नर और नारायण भगवान बड़ी मस्ती से पूछता है अर्जुन, और भगवान कहते हैं बिना पढ़े आदमी गीता का पाठ करे तो विलक्षणता आ जाए। चैतन्य महाप्रभु के परिकरों में एक सज्जन थे, वो गीता का पाठ करते थे, तो पढ़े हुए थे नहीं तो गीता का पाठ अशुद्ध भी बोल देते, परंतु पाठ करते रोते रहते। एक सज्जन ने पूछा रे तेरे गीता का अर्थ आता है, कि गीता का अर्थ नहीं आता तो कुछ रोते हो, तुम ऐसे मस्त हो जाते हो, कि मस्त क्यों हो जाते हो, जा श्री भगवान उवास आता है तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं, अर्जुन उवास अर्जुन के दर्शन हो जाते हैं, संजय उदय संजय के दर्शन हो जाते हैं, ऐसे मेरे भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान कह रहे अर्जुन सुन रहे, पाठ मैं करता हूँ, मेरे को पता नहीं अर्जुन क्या पूछता है और भगवान क्या कहते हैं, ये तो मैं जानता नहीं हूँ, परंतु मेरे को तो दर्शन हो रहे हैं दोनों के, इस बात से मेरे को आनंद आ रहा है, अब विचार करो ऐसी बात है। तो आदर हम नहीं करते हैं वस्तुओं को, हम देखते हैं सुनते हैं पर उनका महत्व हम अंकित नहीं करते हैं, हृदय में उनका महत्व नहीं जानते हैं, इस बात के उस तत्व को इस तरह से वंचित रहते हैं। तो आज से हम गीता का पाठ शुरू कर रहे, भगवान कृष्ण को तो गुरु माने, गुरु मंत्र है वो गीता है, ऐसे मानकर गीता का पढ़ना शुरू कर दे, विचार करना शुरू कर दे। भगवत कृपा से टीकाएं भी ऐसी बहुत मिलती है, संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में, गीता प्रेस में गीता का संग्रह किया है, जिसमें अनेक भाषाओं में गीता लिखी है, मारवाड़ी भाषा में गीता है, और गीता आपकी राजस्थानी अपना मेवाड़ी भाषा में गीता है, अलग अलग मामूली प्रांतों की भाषाओं में गीता है, और जितनी भाषाएं उनमें गीता कई कई तरह की हुई है, विदेशियों की भीतर बात है गीता है, गीता पर जितनी टीका हुई है किसी ग्रंथ पर आज तक टीका नहीं हुई। अनुवाद बाइबल का बहुत हुआ है, अनेक भाषा में हुआ है, पर अनुवाद उल्टा है जो कर दे भाषा में, पर टीका मनुष्य गहरे अर्थों को विचार करने के लिए ऐसा ग्रंथ कोई हुआ ही नहीं, ना होगा ही नहीं, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ऐसा भगवत गीता ग्रंथ है। वो गीता पढ़ने को हमारे को मिल जाए तो समझो कि भगवान की बहुत विशेष गीता है। जैसे बूढ़ी माँ कोई मरती हो तो अपने प्यार करने वाले अधिक स्नेह पात्र कोई बेटा हो उसको एकांत में बेटा दे, इतना कहना है, इतना दे, ये तू रखना, ऐसे प्यार से बताते हैं। तो ऐसे भगवत गीता है, भगवान उसको बताए गीता में हृदय पार्थ, गीता में तो गीता में हृदय है, अधिक प्यार करते हैं उनको गीता देते हैं भगवान, गीता को हृदय देते हैं, गीता हृदय है भगवान का। तो ऐसी बात है, साधु वो हृदय मयम और गीता में हृदय पार्थ, जो भगवान के भक्त है वो भगवान का हृदय है, और भगवान की गीता भगवान का हृदय है, उनके हृदय की गहरी बात है। तो ये धरोहर है, बहुत बढ़िया संपत्ति है, जो चाहे उसको मिलती है, कोई ना लो, भाई हो, बहन हो, अरे किसी वैश्य का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई कान हो, गीता सबकी माँ है, माँ के तो सब बालक बच्चों बरोबर ही पढ़ प्यार के पात्र होते हैं, ऐसे गीता का अर्थ है। तो आप लोग समझे, बड़ा अच्छा आनंद है, आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरु पूर्णिमा की स्मृति के कारण इस स्मृति दिन हो जाए, तो आज हमने भगवत गीता का पाठ शुरू किया है, ऐसा याद करो और बाल बच्चों को गीता सिखाओ, उनको याद कराओ, और आप भी याद करो, और किस तरह से याद करें इसी का कभी मौका लगे तो आपको नमूना बताएंगे। हमारे गीता याद करी हुई कई आदमी है, इस तरह से गीता याद करो और गीता के अर्थों का मनन करो ठीक तरह से, और केवल मनन ही नहीं, गीता के अनुसार से अपना अपना व्यवहार करो, आपस में प्रेम का बर्ताव हो, घर में आपस में सब हो, प्रेम हो, तो भगवत गीता से ऐसा होता है, उसके अनुसार जीवन बनाने से बड़ी शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, आनंद होता है, दुख चला जाता है, दुख संताप जलन शोक चिंता भय उद्वेग ये सब हलचल संसार की मिट जाती है, बड़ा आनंद मिलता है। जिन लोगों ने गीता पढ़ा है और पढ़ते हैं उनके अनुभव से ये बात सिद्ध हुई है कि बहुत ही आनंद इसमें मिलता है, सब शास्त्रों का सार आ जाता है, सर्वोपनिषदों गाओ, सब उपनिषद तो गाए हैं, और दूने वाला गोपाल नंदन है, क्यों गायों को धोने वाला गोपाल ही होता है, और पार्थो वत्स ये भगवान है ना, गाया है उपनिषद, उसका दूध हुआ गीता, धोने वाले गोपाल, और पार्थो वत्स बसड़ा हुआ पार्थ। आपने देखा है गीता वो गाय होती है उसके थनों में जब जा करके बछड़ा मुंह देता है ना, तो यूं चूस रहे चूस रहे यूं देता होगा थोबा यूं फिर चूस रहे फिर यूं देता है। तो ये अर्जुन पूछते किन तद ब्रह्म किम ध्यास हो किन कर्म पुरुष होते हो, ये थोबा दे रहे हैं फिर दूध पाउच जाते बड़ा गीता चपक रहता है दूध, इसलिए अर्जुन के पूछने से भगवान कुछ और कहने लगते हैं, तो मत जाओ गीता दुख दुख सब मत। एक और बात विलक्षण इसमें है कि सर्वोपनिषदो गावो अर्दोग्धा गोपाल नंदना अर पार्थो वत्स अर सुधीर भोगता, जिनकी अच्छी बुद्धि है वे सदयुग में हो, त्रेता में हो, द्वापर में, कलयुग में हो, जो रुचि रखते हैं वो दूध पीने वाले, बदले में बात थोड़ा मिलता है, अर्दोग्धा दूध देते हैं महाराज, पीना हमारे को बताए, हम लोग पीने वाले हैं दूध, तो शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाथ पद्मानिष्ठा ना भी कमल से ब्रह्म प्रकट हुए, ना भी से कमल निकला, कमल के ऊपर ब्रह्म प्रकट हुए और ब्रह्म ने चारों मुखों से वेद का उच्चारण किया, जो यस्य निश्चयम् वेदा, वेद भगवान का श्वास है तो श्वासों से वेद प्रकट हुए, जब भगवान के श्वासों से वेद प्रकट हुए वे स्वयं भगवान गीता के वक्ता कहने लगे, तो श्वास मात्र में ज्ञान है तो वाणी में कितना विस्तृत ज्ञान होगा, तो वाणी में गीता भी हृदय भगवान का हृदय है, तो समझो गीता का अध्ययन करो, मनन करो, कंठ करो और उसके अनुसार जीवन बनाओ, उनमें क्या है भगवान को याद रखना खास बात और भगवान के शरण हो जाना, हे नाथ आपके मैं शरण हूँ, पतिव्रता रहे पति के पास आदियों साहेब के ढिग रहे दासा, जैसे पतिव्रता होती है अपने गोत्र को भी अपने पति के गोत्र में मिला देती है, ब्याही उनका गोत्र पति का गोत्र होता है, पिता का गोत्र नहीं होता है, ऐसे अपने आप को भगवान के समर्पण कर दे, अपने मनुष्य नहीं है वो भगवान का भक्त है, भक्तों की महिमा बहुत विशेषता से कही गई है, तो गीता पढ़ता है और फिर भगवान के भक्तों में कहता है, आपस में चर्चा करता है तो भगवान बड़े खुश होते हैं, जैसे छोरा छोरे आपस में अपने माता पिता की बात करे तो वे सुन सुन कर राजी होते हैं, छोरा बात करते हैं, ऐसे हम लोग गीता जी का पठन करें तो भगवान सुनते होंगे, वे खुश हो रहे हैं, तो ये छोरा क्या कर रहे हैं, मेरी गीता कह रहे हैं, सुन रहे पाठ कर रहे हैं, तो भगवान परम पिता परमेश्वर बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको याद आ जाती है बात, ऐसी विलक्षण बात है। भगवान ने कहा गीता पाठ करता है ना तो ज्ञान यज्ञ तेना हम इष्ट श्यामिति में मति अध्यक्ष तेज एवं धर्म संवाद महा, तुम्हारा हमारा जो संवाद है ज्ञानमय इसका गीता का कोई पाठ करता है उस पुरुष के द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ, जब यज्ञ होता है लाखों करोड़ों रुपया लगे, जब यज्ञ होते हैं बड़े बड़े उन ज्ञान में जब यज्ञ ज्ञान यज्ञ ज्ञान एक सबसे श्रेष्ठ है, तो गीता के पाठ करने से भगवान कहते हैं मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ, वो ज्ञान यज्ञ करता ऐसा नहीं कहते है, मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ, मैं ज्ञान यज्ञ मान लेता हूँ गीता के पढ़ने करने से, ये मति मेरी मति, तो मेरी मति का तात्पर्य क्या है, एक हमने कहानी सुनी है, विदेश में कोई उत्सव हुआ था तो उस उत्सव में पादरी ने एक छोटे बच्चे को बड़ी सुंदर व्याख्यान सुनाया और वो बड़ा गंभीरता से सुना रहे बड़ा, वो एक नाटक में खेलता था बहुत सुंदर शांत था एक्टिंग करता तो वो होता है वो, तो उनको उसने पादरी लिया फिर वो गीता सिखाया और गीता सिखा करके और बड़ा उत्सव था को ज्ञान का अंग्रेजों का, उसमें महाराज उसने को खड़ा कर दिया टेबल पर, नीचे खड़ा तो कौन थे छोटा था बच्चा, टेबल पर खड़ा रह गया, ऐसे खड़ा रह कर गंभीरता से देखा, ऐसे किया देख करके फिर बंगा कर दिया, फिर धीरे धीरे बोला, धीरे धीरे बहुत बहुत तेजी से बोला, ऐसा व्याख्यान की कला सिखा दी और कहने लगा गीता का अर्थ किया से कर से। वो कहे तो महाराज वहाँ सभा में लोग थे वो गोदी ले जो ऊपर ऊपर घूमे, वो वहाँ गोदी ले उससे वो गोदी ले उससे वो गोदी ले ऊपर वो सुनने क्या तमाशा हो गया, और गीता का अर्थ समझता नहीं इतना, केवल भाव समझे जिससे लोगों पर असर पड़ा, तो आप न पढ़ो तो ऐसे पढ़ने लग जाओ तो भगवान के यहाँ पर जहाँ गीता का पाठ होता है वहाँ नारदादि ऋषि रहते हैं, संत महात्मा रहते हैं, पुष्करादि के नत्रोगर रहते हैं, गीता में पार्षद रहते हैं, सब तीर्थ आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, गीता की जान चर्चा होती है, तो सब आपको गोदी लेने लगे, प्यार करने लगे, आदर करने लगे, कितनी मिलिक सी बात है। तो गीता का पाठ करना, मनन करना और उसका अनुष्ठान करना, अपने गीता के साथ जीवन बनाया, भगवान को याद रखना, स्वार्थ का त्याग कर दूसरी सेवा, एक खास दो बात विशेषता से गीता में कही है, जिनके अनुसार अपने दुनिया की सेवा करो, सुख पहुंचाओ और भगवान की याद रखो, नाम जप करो, कीर्तन करो और भगवान को याद रखो। नारायण नारायण नारायण।